देखिए भाई आगे सबक, वलम्मा फरगा मिन तकसीमिल इराब इलल हरकति वल हर्फी व बयानी मवाज़िहिमल मुख्तलिफति शरा फी बयानी मवाज़िल इराब लफ्जी व तकदीरी अल्लज़ैन उशीर इला तकसीमिही इलैहिमा फी मा सबक वलम्मा कानत तकदीरी यु अकल अशार इलैहि अव्वलन सुम्मा बैयना अन्न लफ्ज़ी मा अदाहू। अच्छा भाई, गुज़श्ता सबक में साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि तस्निया और जमा को एराब बिल हर्फ क्यों दिया गया, तो वजह इन्होंने बतलाई थी कि मुफरद जो है वो असल है और तस्निया और जमा उसकी फरा हैं, वो मुफरद ही से बनती हैं तस्निया और जमा। तो असल को जब एराब बिल हरकत दिया था तो फरा को एराब बिल हर्फ दे दिया, क्योंकि इनके आखिर में ऐसे हरूफ भी मौजूद थे जो एराब बनने की सलाहियत रखते थे। फिर उसके बाद यह नुक्ता बयान फरमाया कि जो वव अलिफ या हैं इनमें से तस्निया को अलिफ और या क्यों दिया और जमा को वव और या क्यों दिया, तो उसकी वजह जिक्र की थी कि भाई हमारे पास एराब के तीन हरूफ हैं वव अलिफ और या, और ये तस्निया और जमा दोनों को दे दें तो फिर तो तस्निया और जमा में इल्तिबास लाजिम आएगा, हम फर्क ही नहीं कर सकेंगे कौन सा लफ्ज तस्निया है और कौन सा लफ्ज जमा है, तो लिहाजा दोनों को ये एराब नहीं दिए, दोनों को यही हरूफ नहीं दिए गए, और यही तीनों हरूफ सिर्फ तस्निया को भी नहीं दे सकते क्योंकि फिर जमा बगैर एराब के रह जाएगा, और जमा को भी नहीं दे सकते ये तीनों हरूफ वरना तो तस्निया बगैर एराब के रह जाएगा, तो फिर यूं किया गया कि इनको तकसीम कर दिया गया तस्निया और जमा में। तो हालत रफी में तस्निया को अलिफ दे दिया क्योंकि अलिफ की तस्निया के साथ मुनासिबत थी, क्योंकि अलिफ जो है ये तस्निया की जमीर वाके होती है फेल के अंदर, और वाव जो है हालत रफी में जमा को दे दिया गया क्योंकि जमा की वाव के साथ मुनासिबत है, क्योंकि ये वाव जो है ये जमा की जमीर वाके होता है अफाल के अंदर भाई। फिर उसके बाद या रह गई थी तो वो हालत जरी जो है चाहे तस्निया की हो चाहे जमा की हो दोनों को या दे दी गई असल पर चलते हुए, क्योंकि जर में असल भी क्या है किसके साथ होना चाहिए कसरा के साथ, और या की मुनासिबत है कसरा के साथ क्योंकि या दो कसरों से बनी है, तो हालत जरी में या दे दी गई। और फिर दोनों में फर्क यह किया गया कि तस्निया के अंदर या के माकबल को फतहा दे दिया गया क्योंकि फतहा खफीफ है और तस्निया कसीर हैं, और जमा के अंदर या के माकबल को कसरा दे दिया गया क्योंकि कसरा सकील है और जमा कलील है भाई। फिर उसके बाद नसब रह गया था, अब नसब के अंदर दो सूरतें थीं, या तो इस नसब को हम रफा के ताबे कर दें या इस नसब को हम जर के ताबे कर दें, तो हमने नसब को जर के ताबे कर दिया क्योंकि नसब और जर दोनों में मुनासिबत मौजूद हैं, दोनों फजला वाके होते हैं। उसके बाद फिर अगला मतन हमने हल किया था भाई, साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि एक एराब होता है तकदीरी, एक एराब होता है लफ्जी। तकदीरी एराब वहां आएगा मुआरब के अंदर जहां एराब का पढ़ना मुमकिन ना रहे या एराब का पढ़ना सकील हो जाए, और इसके अलावा बाकी तमाम सूरतों में एराब लफ्जी आएगा मुआरब के अंदर, और एराब का पढ़ना मुमकिन ही ना रहे जैसे कि आसन है। आसन क्या है, इसमें मकसूर है, इसके आखिर में अलिफ मकसूरा तकदीरन मौजूद है, और अलिफ पर तो ना रफा आ सकता है ना नसब आ सकता है और ना जर, तो इस पर मुतलकन तीनों हालतों में एराब तकदीरी आएगा। और इसी तरह गुलामी जैसा लफ्ज यानी वो इसम जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, इलावा जमा मुजक्कर सालिम, ये इलावा जमा मुजक्कर सालिम की कैद क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी वो अलग किस्म है, वो आगे मुस्लिमी या अलग आ रही है कि जमा मुजक्कर सालिम मुजाफ है किसकी तरफ, या जमीर की तरफ, तो उसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी नहीं है, वो सिर्फ हालत रफ़ई में तकदीरी है, और जबकि यह गुलामी का एराब तीनों हालतों में तकदीरी है भाई। और फिर बतलाया था कि एराब तकदीरी वहां होगा जहां एराब की अदायगी जुबान पर सकील हो दुश्वार हो, जैसे कि काजी जैसे लफ्जों में है, यानी इसमें मनकूस के अंदर कि इसके अंदर हालत रफ़ई और जरी में या पर जम्मा और कसरा दोनों सकील होते हैं तो एराब तकदीरी होगा, जबकि नसब इस पर पढ़ा जा सकता है। और और इसी तरह एराब सकील होगा मुस्लिमिया जैसी मिसालों के अंदर, तो वहां भी एराब तकदीरी होगा, लेकिन सिर्फ कौन सी हालत में एराब तकदीरी होगा? रफई हालत में। रफई हालत में मुस्लिमूना का वह हम नहीं पढ़ रहे तो एराब तकदीरी है, और नस्बी जरी में भी मुस्लिमिया पढ़ रहे हैं। तवज्जो है भाई, ये मुस्लिमिया हालत रफी में भी मुस्लिमिया, नस्बी में भी, जरी में भी। जा अनी मुस्लिमिया, रई तो मुस्लिमिया, मरर तो भी मुस्लिमिया। तो इसमें दो लफ्ज हैं, एक मुस्लिमूना और एक या तो मुजाफिल है, उसका एराब तो मजरूर होगी, वो हमेशा महल्लन क्योंकि मबनी है। हां, मुस्लिमूना का एराब है, उस पर आपने गौर करना है, तो आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही आपको बात समझ में आ जाएगी। जा अनी मुस्लिमिया, यहां क्या होना चाहिए था? मुस्लिमूना वह होना चाहिए था, लेकिन वह पर तो हम तलफुज नहीं कर रहे, तो रफा क्या हुआ? तकदीरन। और रई तो मुस्लिमिया व मरर तो भी मुस्लिमिया, यहां मीम के बाद क्या होनी चाहिए थी? या, और वो या अभी भी मौजूद है, सिर्फ उसका इदगाम हुआ है, मौजूद अभी भी है। तो हालत नस्बी और जरी में एराब इनका लफ्जी होगा। अब देखिए आज का सबक भाई, कहते हैं वलम्मा फरग मिन तकसीम الاعراب الى الحركه والحرف وبيان مواضعهم المختلفه। जब मुसन्निफ रहमतुल्लाह एराब की तकसीम से फारिग हो गए, वो जो उन्होंने एराब की तकसीम की हरकत और हर्फ की तरफ, फिर तर्जमा सुनो, वलम्मा फरग मिन तकसीम الاعراب الى الحركه والحرف, और जब मुसन्निफ रहमतुल्लाह वो एराब की हरकत और हर्फ की तरफ तकसीम से फारिग हो गए, व बयानी मवाज़िहिम अल-मुख्तलिफती, और इनके मुख्तलिफ जगहों के बयान से भी फारिग हो गए कि एराब बिल हरकत कहां आएगा, एराब बिल हर्फ कहां आएगा। ये 12 किस्में पीछे इन्होंने जिक्र कर दी भाई। तो शरा फी बयानी मवाज़िल एराब लफ्जी व तकदीरी, तो मुसन्निफ शुरू हुए एराब लफ्जी और एराब तकदीरी की जगहें बयान करने में। अब वो जगहें बयान करेंगे कहां एराब लफ्जी आएगा और कहां एराब तकदीरी आएगा। भाई सवाल पैदा होता है कि मुसन्निफ को पहले हमें बताना चाहिए था कि एराब दो किस्म पर होता है, एक लफ्जी और एक तकदीरी। पहले तकसीम करनी चाहिए थी, फिर जगहें बतानी चाहिए थी कहां तकदीरी आएगा और कहां लफ्जी आएगा। तो इन्होंने तकसीम की नहीं और शुरू हो गए फौरन ही क्या बतलाना कि तकदीरी एराब कहां आएगा और लफ्जी कहां आएगा। तो साहिब जामिया आपको बताएंगे कि बेशक यहां सराहतन तो नहीं बताया कि एराब दो किस्म पर है, लफ्जी और तकदीरी, लेकिन पीछे इशारा कर चुके हैं, पीछे इशारा कर चुके हैं जहां मुआरब का हुक्म उन्होंने बयान किया था, वह हुक्म हुख्तलिफा आखिर हो लफजन ओ तकदीरन, के मुआरब वह है जिसका आखिर बदलता है, कभी लफजन बदलता है और कभी तकदीरन। वहां इशारा हो गया था कि एराब दो किस्म पर होता है, एक लफ्जी और एक तकदीरी। तो दोबारा साहिब काफिया ने जिक्र नहीं किया क्योंकि साहिब काफिया के पास अल्फाज कम हैं, जब एक दफा इशारा हो चुका तो दोबारा उसको जिक्र करने की कोई हाजत नहीं है। तो कहते हैं शराफी बयानी मवाज़िल एराब लफ्जी व तकदीरी, तो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह शुरू हो गए एराब लफ्जी और एराब तकदीरी की जगहें बयान करने के बारे में। अल्लज़ैनी, ये तस्निया पढ़ना भाई, अल्लज़ीना ना पढ़ना, अल्लाज़ीना जमा के लिए आता है और अल्लाज़ैनी तस्निया के लिए आता है, और दोनों का रस्मुल खत ही अलग है। अल्लाज़ीना में एक लाम लिखते हैं और अल्लाज़ैनी में दो लाम लिखते हैं, दो लाम, तो ये दो लाम है अल्लाज़ैनी। तो शुरू हुए एराब लफ्जी और तकदीरी की जगह बयान करने में। अल्लाज़ैनी, वो एराब लफ्जी और तकदीरी, उशीरा इला तकसीमी ही, कि इशारा किया गया है इला तकसीमी ही ऐ तकसीमिल एराबी, एराब की तकसीम की तरफ इशारा किया गया है, इलैहिमा इन दोनों की तरफ, यानी लफ्जी और तकदीरी की तरफ, फी मा सबका मा कबल में, वो जो गुजर चुका वहां इसकी तरफ इशारा हो चुका। बात समझ में आ गई, इबारत समझ में आ गई। अल्लज़ैनी उशीरा इला तकसीमिही इलैहिमा, वो लफ्जी और तकदीरी एराब, अल्लज़ैनी उशीरा इला तकसीमिही इलैहिमा, कि इशारा किया गया है इस एराब के तकसीम होने का, इलैहिमा इन दोनों की तरफ, फी मा सबका मा सबका में, यानी माकबल के अंदर भाई। वलम्मा कानत तकदीरी यु अकल्ला, यहां से साहिबे जामी ये बतला रहे हैं कि भाई एराब लफ्जी और एराब तकदीरी इन में से एराब लफ्जी असल है और एराब तकदीरी उसकी फरा। मुअरब में असल यह है कि एराब लफ्जों में आना चाहिए और तकदीरी वो जो किसी रुकावट या किसी मानिया की वजह से लफ्जों में एराब नहीं आ सकता उसको एराब तकदीरी कहते हैं। तो असल क्या है? एराब लफ्जी। और फरा क्या है? एराब तकदीरी। तो लिहाजा पहले असल को बयान किया जाता है उसके बाद फरा को। तो पहले एराब लफ्जी को बयान करना चाहिए था साहिब काफिया को और उसके बाद एराब तकदीरी को, लेकिन साहिब काफिया ने एराब तकदीरी को पहले बयान किया और एराब लफ्जी को उसके बाद बयान किया। तो उसकी वजह बतला रहे हैं कि देखिए एराब लफ्जी जो है वो 12 किस्मों में आता है जो पीछे जिक्र हो गई, तो उसमें तफसील ज्यादा थी, अगर उसको बयान करते तो उसमें बड़ी तफसील बयान करना पड़ती। और एराब तकदीरी सिर्फ 4 जगह आता है जो आगे आने वाली हैं, 4 जगह आता है, तो एराब तकदीरी में तफसील कम थी भाई। तो पहले वो एराब तकदीरी को इसलिए बयान किया कि उसमें तफसील कम थी, थोड़ी सी बातों से ही सारा मसला बयान हो जाएगा। तो एराब तकदीरी को बयान कर देंगे कि इन 4 जगह एराब तकदीरी आता है, 4 जगह कह लो या यूं को 2 जगह हैं जहां पर एराब तकदीरी आता है, जहां एराब लफ्जी मुमकिन ना हो या एराब क्या हो सकील हो, इन 2 जगहों में एराब तकदीरी आता है। और आखिर में फिर कह देंगे इनके अलावा बाकी सब जगह एराब लफ्जी आता है। तो देखो तकदीरी को मुख्तसरन बयान किया और लफ्जी की तफसील बयान ही नहीं की, बस मुख्तसरन कह दिया तकदीरी एराब के अलावा जो बाकी जगह हैं वहां पर क्या आएगा? मुअरब में एराब लफ्जी आएगा। बात समझ में आ गई। तो क्यों मुकदम किया एराब तकदीरी को? क्योंकि एराब तकदीरी कम है भाई, कम जगहों में आता है और एराब लफ्जी ज्यादा में आता है, तो लिहाजा जो कम है पहले उसको बयान कर देंगे और बाकी लफ्जी के बारे में बस सिर्फ इतना कह देंगे कि बाकी जगह एराब लफ्जी आएगा। तो यह माना है वलम माकान तकदीरी यू अकल, और जब तकदीरी एराब कलील है यानी लफ्जी के मुकाबले में, तो अशारा इलैही अव्वलन, तो पहले उसकी तरफ इशारा किया यानी पहले उसको बयान किया, सुम्मा बयाना अन्न लफ्जिया मा अदाहू, फिर उसके बाद यह बयान किया कि लफ्जी इसके अलावा है। फकाल भाई यहां मा अदाहू आया, याद रखना यह अदा, यह लफ्ज इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है। यह अदा देखो लफ्जी एराब जो है मा अदाहू इसके अलावा में है, इसके अलावा में है। बात समझ में आ गई। तो यह लफ्ज इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है यह अदा, और यह हर्फ जर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और यह फेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तवज्जो है, कभी यह मां बाद को जर देगा, आप समझ जाए इस वक्त हर्फ जर है, और कभी यह मां बाद को नसब देगा, समझ जाए इस वक्त फेल है और आगे इसका मफूल है। अदा क्या है? यह अलावा के माना में इस्तेमाल होता है और इस्तिस्ना के लिए आता है, और कभी यह हर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल होता है और कभी फेल के तौर पर। जब हर्फ जर होगा तो मां बाद को जर देगा, और जब फेल होगा तो मां बाद को नसब देगा। लेकिन अगर इससे पहले मां आ जाए फिर हमेशा यह फेल ही होगा। तो यहां भी मां अदाहू, अदा से पहले क्या आया? मां। तो यहां अदाहू क्या है? फेल है और आगे हाजमीर इसका मफरूल है। हाँ जमीर क्या है? बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम्मा बयाना अन्न लफ्जी या मा अदाहू, फिर यह बयान किया कि लफ्जी एराब जो है इसके अलावा है यानी इस तकदीरी एराब के अलावा। फकाला, तो मुसन्निफ ने फरमाया, मातिन ने फरमाया, अत तकदीरु ऐ तकदीरुल एराबी, अत तकदीरु यह है मतन, और ऐ तकदीरुल एराब यह साहिब जामी आगे फरमा रहे हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? यहां दरअसल बतलाना चाहते हैं कि अत तकदीर बमाने तकदीरुल एराब के है। अत तकदीर बमाने तकदीरुल एराब, तकदीर से हर तकदीर मुराद नहीं है, एराब की तकदीर मुराद है भाई। और मैंने पहले भी यह बयान किया था कि इसमें नहवियों के 2 मजाहिब हैं। बाज नहवी हजरात फरमाते हैं कि यह जो अलिफ लाम होता है यह इवज होता है मुजाफुन इलै का। तो यहां पर भी अत तकदीरों में जो अलिफ लाम है वो इवज है मुजाफोन इले का। तो असल में ये क्या था? तकदीरुल एराब, फिर आखिर से एराब को हजफ किया गया और तकदीर पर अलिफ लाम ले आए। और याद रखो ये मजहब है उलमाए कूफा का, उलमाए कूफा का, कूफा के जो नहवी हैं वो फरमाते हैं कि ये जो अलिफ लाम होता है ये इवज होता है मुजाफुन इले का, जबकि बसरा के नहवी हजरात फरमाते हैं कि नहीं, अलिफ लाम मुजाफिले का इवज नहीं होता, अलिफ लाम के जरिए इशारा किया जाता है। तो यहां पर भी अत तकदीर से हर तकदीर मुराद नहीं है, अलिफ लाम के जरिए किसी खास तकदीर की तरफ इशारा हो रहा है और वह तकदीरुल एराब है, एराब की तकदीर मुराद है। बात समझ में आ गई? तो नतीजा माल दोनों में एक ही निकलेगा, कूफा वालों के नजदीक भी अत तकदीर से क्या मुराद है, तकदीरुल एराब, बसरा वालों के नजदीक भी अत तकदीर से क्या मुराद है, तकदीरुल एराब, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। कूफा वाले कहते हैं कि अत तकदीर से तकदीरुल एराब इस तरह मुराद है कि अत तकदीर में अलिफ लाम इवज है मुजाफुन इलैह से, जबकि बसरा वाले कहते हैं कि अत तकदीर से तकदीरुल एराब इस तरह मुराद है कि अलिफ लाम के जरिए इस तकदीरुल एराब की तरफ इशारा हो रहा है। भाई हर तकदीर मुराद नहीं है, बल्कि कौन सी मुराद है, तकदीरुल एराब। तो साहिब जामी ने आगे फरमाया ऐ तकदीरुल एराबी, दोनों मजहबों के मुताबिक यहां तकरीर जारी हो सकती है, चाहे आप इस अलिफ लाम को इवज बना लें मुजाफिले का, चाहे इस अलिफ लाम के जरिए आप इशारा कर दें तकदीरुल एराब की तरफ। तो कहते हैं अत तकदीरु ऐ तकदीरुल एराबी फीमा, फीमा यह है मतन, फीमा तअज़्ज़रा। अब इस मां से क्या मुराद है, बतलाया ऐ फिल इस्मिल मुअरबी, यह मां से मुराद इसमें मुअरब है, मां से मुराद। तो कहते हैं तकदीरी एराब जो है फीमा ऐ फिल इस्मिल मुअरबी उस इसमें मुअरब में होगी, अल्लज़ी तअज़्ज़रा के जिसमें मुतअज़्ज़िर हो, क्या मुतअज़्ज़िर हो, अल एराब फीही उसमें एराब मुतअज़्ज़िर हो, क्या माना मुतअज़्ज़िर हो, अइम्तना ज़ुहूरुहु फी लफ्ज़िही, यानी मुमतने हो नामुमकिन हो एराब का जाहिर होना उसके लफ्जों में, एराब का लफ्जों में जाहिर होना। तवज्जो है, इन्होंने क्या कहा कि तकदीरी एराब उस जगह आएगा जहां एराब मुमतने हो, क्या माना मुमतने हो, यानी लफ्जों में जाहिर होना मुमकिन ना हो, लफ्जों में जाहिर होना मुमकिन ना हो। कहते हैं भाई देखो इम्तना का यह माना न करना कि एराब का आना ही मुमकिन ना हो, एराब का नफ्से एराब ही मुमकिन नहीं है, नफ्से एराब ही मुमकिन नहीं है, वो तो मबनी के अंदर होता है भाई। तो यहां नफ्से एराब नामुमकिन नहीं है, बल्कि एराब का जुहूर नामुमकिन है, एराब जाहिर नहीं हो सकते। आ तो रहा है जानी आसन रई तो आसन मरर तो भी आसन, एराब आ रहा है लेकिन जाहिर नहीं हो सकता क्योंकि आखिर में अलिफ है भाई। तो इसीलिए कहा कि अयम तना जुहूरुहू के एराब का जुहूर मुमतने होता है फी लफ्ज ही उसके लफ्जों में, यानी लफ्जों के एतबार से एराब जाहिर नहीं हो सकता। वज़ालिका और ये उस वक्त होगा इज़ा लम यकुनिल हर्फुल लज़ी हुआ महल्लुल एराबी काबिलन लिल हरकतिल एराबियती, कि जब वो हर्फ जो महल एराब है वो काबिल ना हो हरकत एराबिया के, वो हरकत एराबिया के काबिल ना हो, जैसे आखिर में क्या आ जाए, अलिफ आ जाए। तर्जमा समझ में आ रहा है? कहते हैं वज़ालिका इज़ा लम यकुनिल हर्फुल लज़ी हुआ महल्लुल एराबी काबिलन लिल हरकतिल एराबियती, और ये उस वक्त होगा जब वो हर्फ जो महल एराब है वो हरकत एराबिया के काबिल ना हो, कमा फिल इस्मिल मुअरबी बिल हरकति, जैसे कि उस इसम में जो मुअरब बिल हरकत है यानी जिसको एराब बिल हरकत दिया गया है, अल्लज़ी फी आखिरिही अलिफ मकसूरतुन, कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, जिसके आखिर में क्या है, अलिफ मकसूरा। तर्जमा समझ में आ गया, फिर एक दफा तर्जमा देख लें, कमा फिल इस्मिल मुअरबी बिल हरकतिल लज़ी फी आखिरिही अलिफ मकसूरतुन, जैसे कि उस इसम में जिसको एराब बिल हरकत दिया गया है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, सवा उनकानत मौजूदतन फिल लफ्ज़ी, बराबर है कि वो अलिफ मकसूरा लफ्जों में मौजूद हो, कल आसा बिलाम तारीफी, जैसे कि आसा है लाम तारीफ के साथ, अल आसा, देखो इसमें अलिफ नहीं गिरेगा, लफ्जों में अलिफ मौजूद है, औ महजूफतन, या जिसके अंदर अलिफ जो है महजूफ है, बिल्तिका इस साकिनैन, इल्तिका इस साकिनैन की वजह से, का आसन, जैसे कि आसन है, बितनवीनी, तनवीन के साथ है भाई ये, आसन को कैसे पढ़ना, तनवीन के साथ, फैनल अलिफ अल मकसूरत अफिस सूरत, غیر قابلت للحرکت, اس لیے کیونکہ الف مقصورہ دونوں صورتوں میں, چاہے لفظوں میں ہو چاہے محذوف ہو, دونوں صورتوں میں غیر قابلت للحرکت, الف جو وہ ہے وہ حرکت کے قابل نہیں, وہ حرکت قبول کرنے والا نہیں. وَكَمَا فِي الْاسْمِ الْمُعْرَبِ بِالْحَرَكَةِ الْمُضَافِ إِلَىٰ يَا الْمُتَكَلِّمِ, اور جیسے کہ اس اسم میں جو معرب بالحرکت ہے, المضافی الى یا المتکلمی, اور مضاف ہے یا متکلم کی طرف, جیسے اس میں ہے یعنی اس میں بھی اعراب متعذر ہے, نحو غلامی, جیسے کہ غلامی, فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ یا الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ, بھائی غلامی کے اندر اعراب کیوں نہیں آ سکتا, کیونکہ یا سے مقبل میم پر پہلے ہی کسرہ آ چکا, وہ کسرہ سے مشغول ہو چکا ہے, یہی بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ مَا قَبْلَ یا الْمُتَكَلِّمِ بِالْكَسْرَةِ, اس لیے کیونکہ جب یا متکلم کا ما قبل مشغول ہو گیا کسرہ کے ساتھ, بھائی کیوں مشغول بالکسرہ ہوا, لِلْمُنَاسَبَتِ, مناسبت کی وجہ سے, کیونکہ کسرہ کی یا کے ساتھ مناسبت ہے, تو جب وہ مشغول ہو گیا, جب مشغول ہو گیا یا متکلم کا ما قبل کسرہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے, قبل دخول العامل, اور یہ مشغول ہوا کسرہ کے ساتھ عامل کے آنے کے بعد یا اس سے پہلے ہی, اس سے پہلے ہی, تو قبل دخول العامل, عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی, تو امتنع ان يدخل علیہ حرکت اخرى, تو ممتنع ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی دوسری حرکت داخل ہو جائے, بعد دخولہ, اس عامل کے داخل ہونے کے بعد, موافقتن لہا او مخالفتن, چاہے اس کے موافق ہو چاہے اس کے مخالف. ادھر دیکھیے, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غلامی جیسے لفظ ہیں ان کے اندر یا آ کر ساتھ جڑی, یا نے اپنے سے ماقبل کسرہ کا تقاضا کیا تو میم پر کسرہ آ گیا, اب یہ کسرہ عامل کے داخل ہونے سے پہلے ہی ہے, تو یہ میم جو یا سے ماقبل ہے یہ کسرہ کے ساتھ مشغول ہو چکا ہے, مشغول, اب اس میم پر کوئی اور حرکت داخل نہیں ہو سکتی, چاہے اس کے مخالف حرکت ہو چاہے موافق ہو, یعنی چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو, رفع اور نصب تو کسرہ کے مخالف ہیں, اور جر کسرہ کے ساتھ آئے تو کسرہ تو کسرہ کے موافق ہے, تو چاہے مخالف ہو یعنی ضمہ یا فتحہ ہو وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا, اور چاہے اس کے موافق ہو یعنی اعراب والا کسرہ وہ بھی اس پر اب داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک کسرہ یہاں پہلے سے موجود ہے. یہ مانا ہے کہ جب عامل سے پہلے اس پر کسرہ آ گیا تو امتنع ان يدخل علیہ حرکت اخرى بعد دخولہ, تو ممتنع ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی دوسری حرکت داخل ہو جائے, بعد دخولہ, عامل کے داخل ہونے کے بعد, موافقتن لہا او مخالفتن, چاہے وہ نئی حرکت جو عامل کی وجہ سے حرکت آنی ہے, چاہے وہ اس کے موافق ہو چاہے اس کے, کوئی حرکت اس پر نئی داخل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہ موافقتن لہا, چاہے اس کو مرفوع پڑھ لو, موافقتن لہا او مخالفتن, اور اس صورت میں ان کو صفت بنا دو جو پیچھے آیا نا, حرکتن اخرى, حرکتن اخرى, یہ حرکتن موصوف, اخرى یہ صفت ہے حرکت کی, اسی طرح موافقتن لہا اور مخالفتن یہ بھی صفت کس کی, حرکت کی, یا چاہے آپ موافقتن لہا اور مخالفتن اس کو اس سے حال بنا لیں, تو حال بھی صفت کے درجے میں ہوتا ہے, تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہو اور مرفوع بھی, موافقتن لہا بھی پڑھ سکتے ہو اور موافقتن لہا بھی. تو کہتے ہیں امتنع ان يدخل علیہ حرکت اخرى بعد دخولہ موافقت لہا او مخالفت, تو ممتنع ہو گیا کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی اور حرکت داخل ہو جائے, بعد دخولہ, عامل کے داخل ہونے کے بعد, بعد دخولہ یہ ضمیر عامل کو راجع کرو, ممتنع ہو, بھئی دیکھو غلامی میں یا آ کر جڑی, یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے, کسرہ, تو میم پر کسرہ آ گیا, اب عامل کے داخل ہونے کے بعد اب مزید کوئی نئی حرکت اس پر نہیں آ سکتی, چاہے اس کے موافق ہو, یہ جو میم کے نیچے کسرہ ہے, اس چاہے اس کسرے کے موافق کوئی حرکت آنا چاہے, چاہے اس کے مخالف آنا چاہے, کوئی حرکت نہیں آ سکتی. یہ مانا ہے تو کہ امتنع ان يدخل علیہ حرکت اخرى, تو ممتنع ہے کہ اس یا کے ماقبل پر کوئی اور حرکت داخل ہو, بعد دخولہ, عامل کے داخل ہونے کے بعد, موافقتن لہا او مخالفتن, وہ حرکت, وہ دوسری حرکت جو ہے وہ چاہے اس کی حرکت کے موافق ہو چاہے اس کی حرکت کے مخالف ہو. ف فما ذهب الیہ بعض من ان اعراب مثل هذا الاسم في حالت الجر لفظی غیر مرضی. بھئی دیکھیے, بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے, ادھر دیکھیے کہ غلامی میں جو غلام ہے اس پر رفع بھی نہیں آ سکتا, نصب بھی نہیں آ سکتا, لیکن کسرہ جو اس پر آیا, اس یہ کسرہ جر والا ہے, یہ کسرہ جر والا ہے. کہتے ہیں بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ جر اس پر لفظاً آتا ہے. بھائی جمہور تو کیا فرماتے ہیں, تینوں اعراب تقدیرن, لیکن بعض نحوی کیا فرماتے ہیں, جر اس پر لفظاً آتا ہے, مرر تو بھی غلامی. اب یہ جو با جار رہا ہے یہ غلامی کو باقاعدہ لفظوں میں جر دے رہی ہے, تو یہ جو کسرہ ہے اب یہ وہ یا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے, با کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں بعض نحوی اس طرف بھی گئے ہیں لیکن یہ قول پسندیدہ نہیں, جمہور نے اس قول کو ترجیح نہیں دی, پسند نہیں کیا. تو کہتے ہیں فما ذهب الیہ بعض, اور وہ جس کی طرف بعض نحوی گئے ہیں کس بات کی طرف گئے ہیں, مین بیان ہے, مین ان اعراب مثل هذا الاسم, یعنی کہ ان جیسے اسموں کا اعراب جو ہے, فی حالت الجر جر والی حالت میں, لفظی لفظی ہوتا ہے. تو وہ جس کی طرف بعض نحوی حضرات گئے ہیں کہ ان جیسے اسموں کا اعراب حالت جری میں لفظی ہوتا ہے, غیر مرضی, یہ پسندیدہ نہیں ہے, جمہور نے اس کو پسند نہیں کیا. مطلقاً یعنی مطلقاً اعراب تقدیری ہوگا, ای فی الاحوال الثلاثی, مطلقاً کا کیا معنی, یعنی کوئی قید نہیں ہے کہ حالت رفی میں ہوگا یا نصبی میں ہوگا یا جاری میں, بلکہ مطلقاً ہر حالت میں, وہی بیان کر رہے ہیں کہ اعراب تقدیری ہوگا, ای فی الاحوال الثلاثی, یعنی کہ تینوں حالتوں میں, مطلقاً ای فی الاحوال الثلاثی, مطلقاً یعنی تینوں احوال میں, یعنی کون الاعراب تقدیرین فی ہذین النوعین من الاسم المعربی انما هو فی جمیع الاحوال غیر مختص ببعضها, یعنی کون الاعراب تقدیرین, یعنی اعراب کا تقدیری ہونا, فی ہذین النوعین, یہ جو دو قسمیں ہیں, من الاسم المعربی, اس میں معرب میں سے, ان دو قسموں میں اعراب کا تقدیری ہونا, انما ہوا فی جمیع الاحوال, یہ تمام احوال میں ہوگا, غیر مختص ببعضها, یہ بعض احوال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام احوال میں اعراب تقدیری ہوگا. آگے دیکھیے, اوستسقلا عطف علی تعذرا, اوستسقلا یہ فعل ہے اور اس کا عطف ہے ما قبل میں جو تعذرا فعل آیا تھا. عبارت کیسے بن گئی تھی, التقدیر فی ما تعذرا اوستسقلا, تقدیر اعراب اس میں معرب میں ہوگا جس پر اعراب ممتنع ہو یا استسقلا یا ثقیل ہو. کہتے ہیں عطف علی تعذرا, یہ تعذرا پر عطف ہے, ای تقدیر الاعراب فی ما تعذرا او فی الاسم الذی استسقل ظهور الاعراب فی لفظه, یعنی تقدیری اعراب فی ما تعذرا, اس اسم معرب میں ہوگا جس میں اعراب متعذر ہو, او فی الاسم الذی, یا اس اسم میں ہوگا, استسقل ظهور الاعراب فی لفظه, کہ اعراب کا ظاہر ہونا ثقیل ہے اس کے لفظوں میں, وذلك اذا كان محل الاعراب قابلا للحركه الاعرابيه, اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب محل اعراب حرکت اعرابیہ کے قابل ہو. بھئی بتایا تھا اعراب ممتنع ہوگا کب, جب وہ حرف جس پر اعراب آنا ہے وہ حرکت اعرابیہ کے قابل ہی نہ ہو, جیسے آخر میں کیا آ جائے, الف آ جائے, یا اس کے بعد یا آ رہی ہو, جیسے کہ غلامی, تو وہ دیکھو حرکت اعرابیہ کے قابل ہی نہیں ہے. اور یہاں پر اعراب ثقیل کب ہوگا کہ جو آخر میں حرف ہے وہ اعراب کے قابل تو ہے, اعراب آ تو سکتا ہے لیکن زبان پر اس کی ادائیگی ثقیل ہے. تو کہتے ہیں وَذَلِكَ اِذَا كَانَ مَحَلُّ الْاِعْرَابِ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْاِعْرَابِيَّتِ, اور یہ اعراب کا ثقیل ہونا اس وقت ہوگا جب وہ جو محل اعراب ہے وہ حرکت اعرابیہ کے قابل ہو, وَلَكِنْ يَكُونُ ظُهُورُهُ فِي اللَّفْزِ ثَقِيلًا عَلَى اللِّسَانِ, لیکن اعراب کا ظاہر ہونا لفظوں میں یہ ثقیل ہوتا ہے, عَلَى اللِّسَانِ زبان پر, کما فی الاسم الذی فی آخره یا ان مکسور ما قبلها, جیسے کہ اس اسم میں جس کے آخر میں या उन मकसूर मा कबलाहा, ऐसी या हो मकसूर मा कबलाहा, कि जिसका माकबल क्या हो मकसूर। देखा यह मकसूर फिर सिफत बिहाल मुतालिक ही आ गई, लफ्जों में यह मकसूर सिफत है या की, और या मरफू है तो मकसूरन भी मरफू, लेकिन मा कबलाहा ऐ मा सबता कबलाहा यह उसके लिए क्या बना फाइल, क्योंकि या मकसूर नहीं होती बल्कि या का मा कबल मकसूर होता है। तो कहते हैं कमाफिल इस्मिल लदी फी आखिरी ही या उन मकसूरन मा कबलाहा, जैसे कि उस इसम में जिसके आखिर में ऐसी या हो जिसका मा कबल मकसूर हो, सवा उनकानत महजूफतन बिल्तिका इस साकिनैन, बराबर है कि वो या महजूफ हो इल्तिकाए साकिनैन की वजह से, का काजिन, जैसे कि काजिन, देखो इसमें या क्या है महजूफ है इल्तिकाए साकिनैन की वजह से, औ गैरा महजूफतिन, या वो या महजूफ ना हो कल काजी, जैसे कि काजी, देखो काजिन बगैर अलिफ लाम के है तो या महजूफ है, और अल काजी अलिफ लाम के साथ है तो अब या महजूफ नहीं क्योंकि इज्तिमाई साकिनैन यहां नहीं है। हासिल कलाम क्या हुआ कि एराब का सकील होना वहां होगा जहां आखिरी हर्फ काबिल हरकत तो है, हरकत एराबिया तो उस पर आ सकती है, लेकिन अगर हरकत एराबिया आएगी तो जुबान पर उसकी अदायगी सकील हो जाएगी, और यह किस जगह होगा, कहते हैं ये उस इसम में होगा जिसके आखिर में ऐसी या आए जिसका माकबल क्या हो मकसूर हो, यानी इसमें मनकूस भाई, और जिसके आखिर में या हो और माकबल मकसूर हो, चाहे ये या लफ्जों में हो या लफ्जों में ना हो, यानी इल्तिका साकिनैन से गिर गई हो, दोनों सूरतों में एराब इसमें तकदीरी होगा लेकिन मुतलका नहीं बल्कि हालत रफी और हालत जरी में, हालत रफी और हालत जहरी में। तो कहते हैं रफ़ व जर्रन, रफा और जर की हालत में, ऐ फी हालत ये रफ़ वल जर्री, यानी रफा और जर की हालत में, इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐ फी हालत ये रफ़ वल जर्री, असल में था ऐ फी हालतैनी तस्नियत, तो नून इजाफत की वजह से गिर गया, तो अब या भी साकिन और अर रफा इसके अंदर लाम को रा करके रा में इदगाम कर दिया, वो रा भी साकिन, तो फिर या और रा जमा हो गए, और अव्वल इनमें से मद्दा हो तो उसको गिराते हैं, और या माकबल में है वो तो मद्दा नहीं है, क्या हालतई, उस या से माकबल तो फतहा है, या से माकबल कसरा हो फिर उसको हर्फ मद्दा कहते हैं, वैसे तो हर्फ मद्दा नहीं कहते, तो इस सूरत में या और रा दोनों साकिन जमा हुए और अव्वल इनमें से हर्फ मद्दा नहीं है तो फिर उसको कसरा वाली हरकत दे दी, तो फी हालत ये रफ़ी, तरीका आज समझ में आया, ऐ फी हालत ये रफ़ी वल जर्री, यानी रफा और जर की हालत में, ला फी हालत इन नस्बी, नसब की हालत में नहीं, उस सूरत में एराब तकदीरी नहीं होगा। भाई क्यों रफा और जर की हालत में क्यों, नसब की हालत में क्यों नहीं, बतलाने लगे हैं कि लिस्तिस्काल जम्मति वल कसरति अलल याई, इसलिए क्योंकि जम्मा और कसरा या पर सकील हैं, दून अल फतहती, ना के फतहा, फतहा सकील नहीं है, वो आ सकता है या पर, व नहवु मुस्लिमिया, और जैसे के मुस्लिमिया, कहते हैं अतफुन अला कौलिही का काजिन, यह अतफ है मातिन के कौल का काजिन पर, तवज्जो है, पीछे मतन में आया था अविस्तुस किला का काजिन, ये काफ मिसल के माना में है, काफ जार्रा है, काजिन मजरूर है, और याद रखो इसका मुब्तदा महजूफ है, मिसालुहू का काजिन, इस्तिस्काल एराब की मिसाल क्या है, एराब के सकील होने की मिसाल क्या है, का काजिन, जैसे के काजिन, ये है खबर, और इसका मुब्तदा महजूफ है मिसालुहू, मिसालु मरफू लफ्जन मुजाफ, हाजमीर मजरूर महल्लन मुजाफोन इले, मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर मुब्तदा, और का काजिन काफ जार्रा और काजिन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए साबितुन से, और यह खबर बन जाएगी, तरीका समझ में आया, तो का काजिन यह है, यह जर्फ मुस्तकर है का काजिन, इसको क्या बनाया खबर, तो जार मजरूर का जब मुतालक इबारत में जिक्र ना हो महजूफ निकालना पड़े उसको क्या कहते हैं ظرف مستقر, تو کاغاز ان کیا بن رہا ہے خبر, تو خبر کے مقام میں جار مجرور ہے تو یہ ظرف مستقر ہے, ثابت ان محذوف نکالنا پڑے گا. آگے جو وہ نحو مسلمیہ آیا, صاحب جامی آپ کو بتائیں گے کہ نحو مسلمیہ اس کا عطف ہو رہا ہے کاغازین پر, کس پر؟ بھائی وہ تو جار مجرور ہے اور یہ تو مضاف مضاف الیہ ہیں, نحو مسلمیہ, نحو مضاف اور مسلمیہ مضافان الیہ, تو اس پر کیسے عطف ہو گیا؟ کہتے ہیں بھائی وہ خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے, مثالہ کاغازین اور مثالہ نحو مسلمیہ, تو خبر کا خبر پر عطف ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کاف کا کیا معنی؟ مثل کا قازن, ای مثل قازن, توجہ ہے. اور نحو مسلمیہ اس کا بھی کیا معنی؟ مثل مسلمیہ, نحو کا معنی بھی مثل. تو سوال, صاحب کافیہ یہ نحو کا لفظ کیوں لائے, نحو کا لفظ کیوں لائے؟ پیچھے دیکھو, پیچھے تھا کا آساؤں و غلامی, کا آساؤں و غلامی, غلامی کا عطف کر دیا آسان پر اور آسان پر کاف جارہ داخل تھا, تو ایک ہی کاف جارہ لے آئے, دوبارہ نحو نہیں لے کر آئے, توجہ ہے. اور یہاں پر اس مسلمیہ کا عطف قازین پر کر دیتے تو وہی کاف دونوں پر داخل ہو رہا ہے گویا, تو نحو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مثل قازین و مثل مسلمیہ خود ہی ہو جاتا. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ نحو دوبارہ کیوں لے کر آئے, حالانکہ صاحب کافیہ تو ایک لفظ بیکار نہیں لے کر آتے. تو وجہ یہ کہ اگر صاحب کافیہ نحو نہ لاتے, صرف یوں کہہ دیتے کہ قاضی و مسلمیہ, بات تو ٹھیک تھی, پھر بھی عطف تو ٹھیک ہو جاتا, لیکن پھر پتہ نہ چلتا کہ یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں یا الگ الگ ہیں. یہ دونوں ایک ہی قسم ہے یا الگ الگ ہیں؟ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں. قازن اس پر اعراب تقدیری صرف دو حالتوں میں آتا ہے, اور مسلمیہ میں اعراب ایک حالت میں آتا ہے. دونوں بالکل الگ الگ ہیں, قسمیں بھی الگ اور اعراب تقدیری بھی الگ الگ صورتوں میں آ رہا ہے. تو اس لیے نحو کا لفظ لا کر اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں میں اعراب, یہ دونوں قسمیں بھی الگ ہیں اور دونوں میں تقدیری اعراب کی صورتیں بھی الگ ہیں. جبکہ وہاں پر آسان پر غلامی کا عطف کر دیا تھا, کیونکہ آسان میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اور غلامی میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ونحو مسلمیہ عطف علی قولہ کا قازین, یہ عطف ہے ماتن کے قول کا قازین پر, بھائی یعنی پوری خبر پر یہ عطف ہے. یعنی تقدیر الاعراب للاستسقاء لقد يكون في الاعراب بالحركه. جی اب ادھر دیکھیے بھائی, آسن آسن میں اعراب متعذر تھا کیونکہ آخر میں الف تھا اور الف پر نہ رفع آ سکتا ہے نہ نصب اور نہ جر. غلامی میں اس میں بھی غلام پر تینوں اعراب تقدیری تھے کیونکہ یا سے ما قبل جو ہے وہ جو میم ہے اس پر نہ رفع آ سکتا ہے نہ نصب اور نہ جر. اور ان دونوں میں اعراب یاد رکھو بالحرکت ہے. آسان میں بھی اعراب بالحرکت ہے لیکن تقدیری ہے. اعراب بالحرکت, اعراب بالحرکت ہے نا. آسان میں الف کو اعراب بنایا ہے یا ضمہ فتحہ کسرہ کو اعراب بنایا ہے؟ اگر اعراب الف کو بنایا ہے تو الف تو آ رہا ہے یا نہیں اس کے آخر میں؟ الف تو العصا الف تو آ رہا ہے, بعض صورتوں میں گرے گا بعض صورتوں میں نہیں گرے گا, تو پھر تو اعراب لفظی کہنا چاہیے تھا. تو اس کا اعراب بالحروف نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ بالحرکت ہے. اور حرکتیں الف پر آ سکتی ہیں؟ نہیں. تو اس لیے اعراب تقدیری. اور غلامی میں بھی غلام کا اعراب بالحرکت ہے تو اس کا بھی اعراب تقدیری. معلوم ہوا کہ اعراب متعذر ہوتا ہے صرف اعراب بالحرکت میں. اعراب دو صورتیں ہیں اعراب تقدیری کی, یا وہ اعراب متعذر ہوگا یا ثقیل ہوگا. متعذر اعراب صرف اعراب بالحرکت میں ہوتا ہے. توجہ نہیں توجہ, ایک ہے اعراب بالحرکت, ایک ہے اعراب بالحروف. اور اسی طرح اعراب کبھی لفظاً ہوتا ہے کبھی تقدیراً. تقدیراً اعراب کب ہوگا؟ جب آخری حرف پر حرکت نہ لائی جا سکے. تو معلوم ہو اعراب بالحرکت ہی میں اعراب متعذر ہوگا, اور کسی صورت میں اعراب بالحرف میں متعذر نہیں ہوگا. بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی اعراب تقدیری کی دو صورتیں ہیں, کتنی؟ اعراب تقدیری اس وقت بھی ہوگا جب اعراب کا لانا ہی ممکن نہ رہے، اور اس وقت بھی اعراب تقدیری ہوگا جب اعراب کا لانا ممکن تو ہے لیکن ثقیل ہے. تو جو اعراب کا لانا ممکن ہی نہ رہے یہ صرف اعراب بالحرکت کی صورت میں ہوگا. اعراب بالحرکت کی صورت میں ہوگا کہ حرکت کو لانا ممکن ہی نہیں ہے عصن اور غلامی کے اوپر بھائی. اور اعراب کا ثقیل ہونا یہ اعراب بالحرکت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اعراب بالحرف میں بھی ہو سکتا ہے. قازن اس پر اعراب کا لانا ثقیل ہے، یعنی حرکت کا لانا ثقیل ہے. اور مسلمیہ اس کا اعراب تقدیرن ہے، اس پر اعراب کا لانا ثقیل ہے. اور یہ واو اعراب بالحرف اس کا لانا کیا ہے؟ ثقیل ہے. تو معلوم ہوا اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہ رہے، وہ صرف کس میں ہوگا؟ اعراب بالحرکت میں. اور اعراب کا پڑھنا ثقیل ہو جائے یہ اعراب بالحرکت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے قاضی میں ہے، اور اعراب بالحرف میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کس میں ہے؟ مسلمیہ میں. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں یعنی تقدیر الاعراب للاستثقال، یعنی اعراب کا تقدیری ہونا ثقیل ہونے کی وجہ سے، قد یکون فی الاعراب بالحرکت، یہ کبھی اعراب بالحرکت میں ہوگا، وقد یکون فی الاعراب بالحرف، اور کبھی یہ اعراب بالحرف میں ہوگا، نحو مسلمیہ، جیسے کہ مسلمیہ ہے. بخلاف تقدیر الاعراب للتعذری، بخلاف اعراب کا تقدیری ہونا للتعذری، متعذر ہونے کی وجہ سے جو اعراب کا تقدیری ہونا ہے، فانه مختص بالاعراب بالحرکت، وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اعراب بالحرکت کے ساتھ بھائی. رفعن یہ مسلمیہ سے حال واقع ہو رہا ہے، تو یہ حال ہے. ونحو مسلمیہ رفعن، اور مسلمیہ جیسی مثالوں میں حالت رفعی میں اعراب کا پڑھنا ثقیل ہے تو اعراب تقدیری ہوگا. یعنی تقدیر الاعراب فی نحو مسلمی یا انما ہوا فی حالت رفعی فقط، یعنی اعراب کا تقدیری ہونا مسلمیہ جیسی مثالوں میں وہ صرف حالت رفعی میں ہے، دون النصب والجر، نہ کہ نصب اور جر میں. نحو جاءنی مسلمیہ، جیسے جاءنی مسلمیہ، ادھر دیکھیے جاءنی مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمون اور پھر یا تھی، نون گر گیا تو کیا تھا؟ جا مسلمو یا، پھر وہ اور یا جمع ہوئے، وہ ساکن تھا اس کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مسلمو یا. پھر میم کو کسرہ دیا تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ. اب یہی بیان کریں گے. کہتے ہیں نحو جا انی مسلمیہ فإن اصلہ مسلمو یا، اس لیے کیونکہ اس کی اصل جو تھی وہ مسلمو یا تھی، بسقوط النون بالاضافتی، نون کے ساقط ہونے سے، بالاضافتی اضافت کی وجہ سے، فاجتمع الواو والیاء، تو واو اور یا جمع ہو گئے مسلمو یا کے اندر، والسابق منہما ساکن، اور ان میں سے جو مقدم تھا وہ ساکن تھا، جو پہلے تھا وہ ساکن تھا، فانقلبت الواو یا ان، تو وہ واو پلٹ گیا یا ہو کر، یعنی وہ واو یا بن گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، وکسر ما قبل الیاء، اور یا کے ما قبل کو کسرہ دے دیا گیا تو مسلمی یا ہو گیا، فلم یبقى علامۃ الرفع التی ہی الواو فی اللفظ، تو باقی نہ رہی رفع کی وہ علامت جو کہ واو ہے، رفع کی وہ علامت جو واو ہے وہ لفظوں میں باقی. تو کہتے ہیں فلم یبقى علامۃ الرفع التی ہی الواو فی اللفظ، تو بس باقی نہ رہی رفع کی وہ علامت جو کہ واو ہے لفظوں میں. فصار الاعراب فی حالت الرفع تقدیریا، تو اعراب جو ہے حالت رفع میں تقدیری ہو گیا، بخلاف حالتین نصب والجر، بخلاف نصب اور جر کی حالتوں کے. فإن الادغام، وہاں پر نصب اور جر والی حالتوں میں کیا ہوا تھا؟ یا کا یا میں ادغام ہوا تھا، یا تو پہلے ہی موجود تھی، تو کیا ادغام کی وجہ سے یا گر گئی یا ابھی بھی موجود ہے؟ ابھی بھی موجود ہے. تو باقی دونوں حالتوں میں اعراب لفظی ہے، ہم اس یا پر باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بخلاف حالتین نصب والجر، بخلاف نصب اور جر کی حالت کے. فإن الادغام لا يخرج الياء عن حقيقتها، اس لیے کیونکہ ادغام جو ہے وہ یا کو اس کی حقیقت سے نہیں نکالتا، یا ابھی بھی موجود ہے اور یا ہی ہے. فإن الياء المدغمة ايضا ياء، اس لیے کیونکہ وہ یا جس کا ادغام کر دیا گیا وہ بھی یا ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو نصب اور جر میں اعراب لفظی ہی ہے مسلمیہ کا. وقد يكون الاعراب بالحروف تقديريا في الاحوال الثلاث، जी यहां से साहिब जामी एक नया फायदा आपको बतला रहे हैं। कहते हैं वकद यकूनुल एराबु बिल हरूफ तकदीरियन, और कभी कभार एराब बिल हरूफ भी तकदीरी होता है। फिल अहवाल सलासी, तीनों अहवाल में, भाई मुस्लिमू या इसके अंदर एराब बिल हर्फ था और तकदीरी था, सिर्फ कितनी हालतों में, एक हालत में, और कभी तीनों हालतों में एराब बिल हर्फ तकदीरी होता है। और वो कब, जब ये अस्माए सिता मुकब्बरा जब ये मुजाफ हो जाए मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ। अस्माए सिता मुकब्बरा इसके अंदर कितनी शर्तें थीं, तीन। पहली शर्त क्या, मुकब्बर हो, दूसरी शर्त मुअहद हो, तीसरी मुजाफ हो, लेकिन यह मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो। अगर मुजाफ तो हो लेकिन ये मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ हो जाएं तो फिर तीनों हालतों में इनका एराब तकदीरी होगा और तकदीर हर्फ के साथ होगा। जैसे अबू, इसके साथ मैं अर रजुल को जोड़ता हूं, जा अनी, कैसे पढ़ेंगे, अबू को अर रजुल से जरा जोड़ो, जा अनी अबुर रजुल, देखो वो वाव गिर गया, क्यों गिरा, क्योंकि वह भी साकिन और अर रजुल के अंदर जो रा आ रही थी वो भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिन है नया, अव्वल मद्दा था गिर गया, तो जा अनी अबुर रजुल, रई तो अबर रजुल, देखो यहां अलिफ गिर गया, और मरारतु भी अबिर रजुल, यहां या गिर गई, तो तीनों जगह वाव अलिफ या तो आ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम उन पर तलफ्फुज़ कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, या वो इल्तिकाई साकिनैन से वो वाव अलिफ और या गिर चुके हैं, वो गिर चुके हैं, जब गिर चुके हैं हम उन पर तलफ्फुज़ नहीं कर रहे, तो तीनों सूरतों में एराब तकदीरी है। जानी अबुर रजुल, रअयतु अबर रजुल, मरारतु भी अबिर रजुल, तीनों सूरतों में एराब तकदीरी है। तो कहते हैं वकद यकूनुल एराब बिल हरूफ ही तकदीरी, और कभी कभार एराब बिल हरूफ जो है वो तकदीरी होता है। फिल अहवाल सलासी, तीनों अहवाल में, फी मिसली जा अनी अबुल कौमी व रई तो अबल कौमी व मरर तो भी अबिल कौमी, इस जैसी मिसालों में, जा अनी अबुल कौम, कौम का माना लोग, आया मेरे पास उन लोगों के अब उन लोगों का बाप आया, और रई तो अबल कौमी या मरर तो भी अबिल कौमी, फइन्नहु लम्मा सकता हुरूफुल एराबी अनिल लफ्ज़ी, इसलिए क्योंकि जब हुरूफ एराब साकित हो गए, गिर गए अनिल लफ्ज़ी लफ्जों से, बिल्तिका साकिनैन इल्तिका साकिनैन की वजह से, तो लम यब कल एराब लफ्जन, तो एराब लफ्जन होकर बाकी न रहा, बल सारा तकदीरियन, बल्कि तकदीरी हो गया। बात समझ में आ गई, देखो साहिब जामी ने इसको अलहदा बयान किया, क्यों, वजह यह कि पीछे इन्होंने बताया तकदीरी होगा दो जगह, एक वो जगह जहां एराब का पढ़ना मुमकिन ही ना हो, और एक वो जगह जहां एराब का पढ़ना सकील हो, फिर उस सकील के अंदर तफसील बताई कि सकील जैसे काजी जैसी मिसालें हैं, उनमें रफा के अंदर भी सकील है एराब और जर की हालत में भी सकील, और जैसे मुस्लिमिया है इसके अंदर सिर्फ रफा की हालत में एराब सकील है, एराब बिल हर्फ है, तो देखो एराब बिल हर्फ है और तकदीरन है, तो ये जो है इसको उसमें दाखिल नहीं कर सकते थे भाई, उसमें सिर्फ एक हालत में एराब बिल हर्फ तकदीरी है, और ये जो जानी अबुल कौम, रई तो अबल कौम, मरर तो भी अबिल कौम, इसमें एराब बिल हर्फ तीनों हालतों में तकदीरी है, और ये उससे मुख्तलिफ है भाई, मुख्तलिफ एक ही एतबार से, वहां एक हालत में एराब तकदीरी है और यहां तीनों हालतों में, नीज मुख्तलिफ इस एतबार से भी है कि वहां मुस्लिमिया मुजाह मुजाफिले हैं या जमीर है में जुड़ी हुई है, और जमीर कौन सी जमीर है, मजरूर, और जमीर है मजरूर जो है वो अलग हो ही नहीं सकती कलीमे से, मजरूर सिर्फ याद रखो जमीर मरफू मुनफसिल भी होती है मुत्तसिल भी होती है, जो जमीर मनसूब हो वो भी मुत्तसिल भी होती है और मुनफसिल भी होती है, लेकिन मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है मुनफसिल होती ही नहीं, तो वहां मुस्लिमिया के अंदर या जमीर मुस्लिमूना के साथ जुड़ी है और ये इतना पक्का इत्तेसाल है कि गोया एक ही कलीमा समझो, इसको क्या समझो, एक ही कलीमा समझो, लिहाजा इसके अंदर तो एराब तकदीरी को जिक्र कर दिया, लेकिन अबुल कौम अबल कौम अबिल कौम इसको उसमें दाखिल नहीं किया, इसको जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहां तो बाकायदा यहां जो वो अलिफ या जो एराब के गिरे हैं वो अगले कलीमे के साथ जुड़ने की वजह से गिरे हैं, अगले कलीमे के साथ जुड़ने की वजह से गिरे हैं, और अबू अलग कलिमा है और अलकौम या अर्रजुल अलग कलिमा है। और अर्रजुल और अलकौम क्या अकेले जुदा हो सकते हैं यानी मुजाफ से हो सकते हैं? जमीर तो जुदा नहीं हो सकती थी लेकिन ये जुदा हो सकते हैं, लिहाजा इसको साहिबे काफिया ने शुमार नहीं किया, क्योंकि यहां जो एराब तकदीरी हो रहा है वो अगले कलीमे की वजह से हो रहा है, वो अलग कलीमा है बाकायदा। और मुस्लिमिया के अंदर भी या अगरचे अलग कलीमा है लेकिन उसको अलग शुमार नहीं किया क्योंकि उसका इतिसाल बड़ा शदीद है। बात समझ में आ गए? आगे देखिए, कहते हैं वल लफ्जी यू अल एराबुल मुतलफजु बिही। मतन में क्या आया? अल लफ्जी यू कहते हैं वल लफ्जी यू अल एराबुल मुतलफजु बिही फी मादाहू। और लफ्जी जो है यानी एराब मुतलफज बिही जो है फी मादाहू इन मजकूरा सूरतों के अलावा में है, इन मजकूरा सूरतों के अलावा में है। भाई मतन में आया अल लफ्जियो, और साहिब जामी आगे फरमा रहे हैं अल एराबुल मुतलफजु बिही। दरअसल बतलाना यह चाहते हैं कि अल लफ्जी का मौसूफ महजूफ है और वह अल एराब है। तो अल लफ्जियो असल इबारत क्या है? वल एराबुल लफ्जियो। तवज्जो है, याद रखो यह जो याए निस्बत जिस इसम के साथ मिल जाए ये सिफत के सिगे के दर्जे में हो जाता है। लाहौर, इसके साथ याए मुशद्दत जोड़ दो निस्बत वाली, क्या बन गया? लाहौरियन। अब इसका क्या माना? लाहौर वाला। अब ये सिफत के दर्जे में है, लाहौर वाला ये कोई चीज होगी, कोई आदमी होगा या कोई औरत होगी या कोई चीज, तो ये सिफत के सिगे के दर्जे में हो जाता है। और याद रखो जैसे कायमुन का सीगा है, कौन सा सीगा? इसमें फाइल, और इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए? फाइल चाहिए। और मजरूबुन ये कौन सा सीगा है? इसमें मफूल, और इसके लिए क्या चाहिए? नाई फाइल। इसी तरह अब ये जो लाहौरियन, ये जो या निस्बत जिसके साथ जुड़ गई, इसके लिए भी अब फाइल या नाई फाइल चाहिए और ये सिफत बनेगा। अब इसके लिए फाइल चाहिए या नाई फाइल चाहिए? तो बाज उलमा इसकी तावील करते हैं कि ये इसमें मनसूब है, निस्बत से है, मनसूब है, इसकी निस्बत की गई है। और मनसूब कौन सा सीगा है? इसमें मफूल, और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए? नाई फाइल। तो इस ये लाहौरियन ये भी इसमें मनसूब है, इसके अंदर हुआ जमीर होगी जो नाई फाइल बनेगी और ये उस चीज की तरफ लौटेगी जिसके साथ आपने इसको जोड़ना है। मैंने बताया था जुमला या शिबे जुमला को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो क्या जरूरी है? रबत जरूरी है। तो अब आप अगर आप कहना चाहते हैं रजुलन लाहौरियन, तो रजुलन मौसूफ, लाहौरियन इसमें मनसूब, लाहौरियन इसमें मनसूब, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका नाई फाइल जो किसको राजे? रजुल मौसूफ को। लाहौरी कौन है? वो रजुल है। तो इसमें मनसूब अपने नाई फाइल से मिलकर शिवे जुमला होकर यह सिफत हुआ रजुल के लिए, तो यह मौसूफ सिफत बन गए। तो रजुलन लाहौरियन क्या तर्जमा? ऐसा आदमी जो मनसूब है लाहौर की तरफ। तो इसके अंदर जमीर को क्या बनाया? नाई फाइल, क्योंकि लाहौरियन किस तावील में है? इसमें मनसूब की तावील में है। तवज्जो है, इसमें मनसूब, जबकि बाज उलमा इसकी तावील करते हैं इसमें फाइल के साथ कि ये इसमें मुंतसिब है। ये क्या है? ये इसमें मुंतसिब है, ऐसा इसम है जिसकी निस्बत हो रही है। तो इस सूरत में इसके अंदर हुआ जमीर फाइल बनाते हैं वो। तो बहरहाल बात एक ही है, चाहे आप इसको इसमें मनसूब की तावील में लें चाहे इसमें मुंतसिब की तावील में लें। मनसूब इसमें मफूल का सीगा है और मुंतसिब इसमें फाइल का सीगा है, तो उसके मुताबिक जमीर को फाइल या नाई फाइल बना लेंगे। तो बताना यह चाहते हैं वल लफ्जियो अल एराबुल मुतलफजु बिही। अल एराब का लफ्ज निकाल कर साहिब जामी ने मौसूफ बतला दिया कि अल लफ्जियो यह तो इसमें मनसूब है, यह तो सिफत बनता है, तो इसका मौसूफ क्या है? बतलाया अल एराब है। और अल लफ्जियो मैंने क्या बताया? ये सिफत के सिगे के दर्जे में है, इसीलिए कहा अल मुतलफजु बिही। देखो इसमें मफूल का सीगा आगे ले आए, वो एराब अल मुतलफजु बिही जिस पर तलफुज किया जाए भाई, फीमा अदा हो इनके अलावा में होगा, यानी फीमा अदा मा जुकीरा। देखा उसके अलावा में जो माकबल में जिक्र हो चुका, मैंने पहले आपको बतला दिया कि पीछे तो दो चीजें जिक्र हुई थी, ایک صورت میں اعراب متعذر ہوتا ہے اور ایک صورت میں اعراب ثقیل ہوتا ہے. تو یہاں تو ہا ضمیر مفرد کی لے آئے, تثنیہ کی ضمیر چاہیے تھی, تو بتلا دیا یہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ ما قبل کو راجع ہے, ما ذکیرہ کی تعویل میں جو ما قبل میں ذکر ہو چکا. واللفظی فیما عداہ, اور لفظی اعراب ان کے علاوہ میں ہوگا جو پیچھے ذکر ہو چکے. اب وہ چاہے ایک چیز ہے, چاہے دو ہیں, چاہے دس ہیں, سب اس کے اندر آ گئے. تو یہ ما ذکیرہ کی تعویل میں ہا ضمیر ان دونوں کی طرف راجع کر دی. مم ما تعذر, یعنی کہ اب بیان کر رہے ہیں بھائی پیچھے کیا ذکر ہوئے تھے, مین کے ذریعے بیان ہے. مم ما تعذر فیہ الاعراب اب استثقل, یعنی وہ جس کے اندر اعراب جو ہے متعذر تھا یا ثقیل تھا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو لفظی اعراب ان دو صورتوں کے علاوہ ہوگا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.